वाह करें। इसमें हम कैसे आगे बढ़े, अभी भी एनसी की जो रिट्रीट थी उसमें यही लक्ष्य था। और बाबा भी हमेशा कहते रहते हैं स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस हो। तो जितना आप सभी अपने पुरुषार्थ में लक्ष्य देंगे और ध्यान देंगे तो उससे क्या होगा कि ज्ञान सरोवर का वातावरण बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। अपना तो कल्याण होगा, औरों का भी कल्याण होगा। तो इसलिए ये बात जरूर ध्यान में रखें। और दूसरा है, कभी भी किसी को कोई भी बात का समझो तकलीफ हो या ऐसी बात हो, आप बिना संकोच हमारे पास आ सकते हैं। दादी भी आजकल यहीं होती है, गीता बहन तो है ही, तो इसलिए ये ख्याल रखना है। जानती तो मैं कह रहती, कभी अपना मन भारी नहीं रखना और कभी भी आपस में चूचा नहीं करते रहना। कभी भी कुछ भी बात हो तो बड़ों से आकर हल्के होकर, फिर यदि आप अपनी सेवा में लग जाएंगे तो नेचुरली है सेवा में भी सफलता मिलेगी और अपनी भी खुशी कायम रहेंगी। ओम शांति।
ओम शांति। ऐसे तो आप सभी ने मुरली रिवाइज की होगी, क्योंकि आजकल तो साधन ऐसे हैं जो एकदम मुरली मिल जाती है। कोई टाइम ऐसा था कि 8 दिन के बाद मुरली मिलती थी। साकर बाबा के दिनों में जब मुरली मेल होती थी तो 8 दिन का गैप होता था मुरली में, और आजकल 1 घंटे का भी नहीं होता है। सब सुनते हैं कि मुरली पूरी होती है और सबको वही कॉपी दे देते हैं। हम लोगों को तो नेक्स्ट मॉर्निंग मिलती है ना। तो बाबा ने और टेक्नोलॉजी साइंस ने कितना अच्छा साधन रचा है। विचार सागर मंथन तो ब्राह्मणों का स्वभाव बन गया है। और एक पॉइंट ऐसा होता है कि पॉइंट्स तो हम सुनते ही हैं, पर अगर राइट टाइम पर वो बात याद आ जाती है तो। एक बार ऐसे ही दादी जानकी ने कहा, कोई बात चल रही थी कि बुद्धि क्यों इधर उधर जाती है ना, क्यों संकल्प चल जाते हैं। तो दादी ने कहा, जब बुद्धि पूरी तरह से ज्ञान का ही मनन करती रहेगी तो कोई भी बात अंदर नहीं जाएगी बुद्धि में, सुनेंगे भी ना तो बुद्धि ग्रहण नहीं करेगी। तो मुझे 3-4 दिन पहले ऐसे ही वो बात याद आई। जब याद आई तो मैंने नोटिस किया कि ये रियली इसका अभ्यास किया जाए कि बुद्धि जो है वो ज्ञान का ही मनन करे। बाबा क्या कहते हैं, बाबा ने क्या सुनाया, बाबा जैसे बस बुद्धि को वही अगर चले तो कितनी भी बड़ी कोई बात आए, कोई परिस्थिति आए तो बुद्धि पुल नहीं हो जैसे उसकी तरफ ना। तो इस बार बाबा ने क्या कहा कि बच्चे नॉलेजफुल हैं, तो उससे भी अगर कनेक्ट करें तो कितना जल्दी मुझे ज्ञान से रेस्पॉन्स मिल जाता है। जैसे कोई संकल्प चलते हैं, कोई भी बात होती है, कोई संकल्प आते हैं, तो जिस पर बाबा ने खास ये क्या कहा है इस बार कि व्यर्थ को 2 खजाने, कौन से 2 खजाने, संकल्प और समय का खजाना जो है उसको जमा करना है, और दूसरी तरफ जैसे कि व्यर्थ नहीं जाए या माया को दूर से ही भगाओ, क्योंकि माया भी जो आती है ना वो बड़े अच्छे तरीके से आती है, ये बात राइट है, इसमें लॉजिक है, इसको सिद्ध करना ही चाहिए। फिर वो पहले संकल्प चलते हैं, फिर बुद्धि चलती है, फिर वाणी में आते हैं। चाहे राइट है लेकिन तो भी किसी बात को आप कितने तक विस्तार में जाएंगे, बहुत विस्तार में जाते हैं तो बहुत संकल्प शक्ति, समय की शक्ति चली जाती है, पर उस समय नॉलेजफुल बन करके और उसका राइट आंसर आ जाए अपने सामने तो स्टॉप हो जाएगा ना। तो ये नहीं कि सिर्फ हमको ये देखना है कि व्यर्थ ना जाए, जमा हो, और उसके साथ साथ उसकी जो क्वालिटी है संकल्प की, क्योंकि संकल्प ऊंच हो, संकल्प श्रेष्ठ हो, तो वो जो सिद्धि है, जो प्राप्ति है श्रेष्ठ संकल्प की, वो भी जैसे अनुभव में होगी ना। तो इसलिए जैसे मैं खुद ये 3-4 दिन से बहुत अटेंशन दे रही हूं कि क्या मेरा सारा दिन बुद्धि ज्ञान में ही चलती है या मनन जो है वो ज्ञान का ही चलता है। ये जैसे एक बाबा तो हमेशा कहते ही हैं, लेकिन फुल टाइम इस पर अटेंशन रहे, जैसे याद के लिए बाबा कहते हैं, इसी तरह से इतना ही ज्ञान का मनन चले जो बुद्धि बिल्कुल ही कहीं पुल नहीं हो, मतलब चाहे देह की तरफ, चाहे कोई बात होती है, कोई परिस्थिति आती है, लेकिन किसी तरफ भी चल नहीं जाए बुद्धि। फिर ये भी बात एक बार चली थी कि अगर बुद्धि चल जाती है ना, फिर क्यों क्या बहुत आता है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। लेकिन इतनी भी चला ले हम बुद्धि, तो जैसे ही पता चले बुद्धि चलनी शुरू हो गई है, उस समय पर ज्ञान को अप्लाई कर ले। तो बाबा ने जो टाइटल दिया है कि नॉलेजफुल हो। मामा से एक बार पूछा, जब मामा ठीक तबीयत ठीक नहीं थी मामा की, तो मामा अपने कमरे में मुरली सुनती थी, तो किसी ने कहा मामा आप तो सरस्वती हैं, आपके पास तो ज्ञान की कोई, मामा तो नॉलेजफुल थी कितनी अच्छी, आप क्यों मुरली जब सुनती है तो आपका क्या लक्ष्य है कि आपको नॉलेज की तो जरूरत नहीं। तो मामा ने कहा कि जब मैं मुरली सुनती हूं तो मैं चेक करती हूं अपने को, मैं ये देखती हूं कि बाबा जो कह रहा है मैंने वो सब कुछ किया है कि नहीं। और दीदी से पूछते थे तो दीदी का फिर सर्विस में बहुत था, धारणा में था, तो दीदी कहती है मैं ये नोट्स लेती हूं कौन सी सर्विस अभी तक नहीं की है। और मेरे अंदर दीदी को बहुत उमंग गुस्सा होता था, दीदी ये सर्विस हमने अभी तक नहीं की, ये बाबा ने कहा हमने अभी तक नहीं किया। तो वो हमेशा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों की इंचार्ज दीदी थी, फिर कहती थी देखो ये सेवा नहीं हुई है, ये सेवा हमको जरूर करनी है। तो जैसे मुरली भी जब हम सुनते हैं, तो इस बार जैसे बाबा ने खास पहले पहले 3 बातें हमें बताई, कौन सी 3 बातें बताई, कि बच्चों को सबसे पहले पालना मिलती है और पढ़ाई मिलती है और वरदान मिलते हैं। तो उसमें देखना होता है अंदर में कि क्या मुझे ये तीनों अनुभूति, तीनों प्रकार की, सदा ये पालना का अनुभव। और इस बार तो बाबल ने पालना की जिम्मेवारी ले ली ना, गारंटी ले ली, कौन सी पालना, ईश्वरी पालना है ही ज्ञान की, लेकिन दाल रोटी की भी जिम्मेवारी ले ली ना। बाबा ने कहा 2-3 सब्जी तो नहीं, पर दाल रोटी तो और ही अच्छी है ना हेल्थ के लिए, नहीं हाँ। बाबा ने कहा थोड़ा क्लियर बोलो जोर से, क्या बोला, अच्छा हाँ ये भी एक बड़ी बात प्रश्न आ गया। आज बहने कह रही थी, मैंने कहा कि मैं समझती हूँ कि आत्म प्रकाश, मैंने इनको यही बोला कि मैं आत्म प्रकाश से फोन पे पूछती हूँ कि जब बोनविटा बनता था तो वो थे उस समय टोली डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर, या तो वो क्या है कि गुड़ है ना उसको पिघलाते हैं, और जब पिघलने लगता है तो उसमें सोडा डालते हैं, खाने वाली सोडा, तो ऐसे जैसे ना वो हो जाता है, पॉप अप हो जाता है, फिर उसको मैसूपाक की तरह फिर उसको थाली में डाल के सेट करते हैं, फिर उसके पीसेस करते थे, बहुत अच्छी टोली लगती थी। आनंद भाई को आती है क्या वो टोली, तो फिर खिलाते नहीं है, बाबा ने कहा है तो कम से कम बोनविटा तो बनाओ ना। नहीं कहने का मतलब ये कि जब बाबा पालना कहते हैं तो हर तरह की पालना है ना, तो अगर बाबा की पालना है आप लोगों को तो यहाँ कोई चिंता नहीं होती ना, होती है कभी कभी क्या होगा हा? नहीं, किसी को नहीं होती, कोई भी नहीं है यहाँ जिसको चिंता होती हो। तो बाबा ने ये हम लोगों के लिए कहा होगा जो बाहर रहते हैं, राइट, जिनको कमाई करनी है, जैसे हमारी बहनें भी हैं, अभी हलचल चल रही है विदेश में, तो समय प्रति समय पूछते हैं दादी के पास जाके, कितने सेंटर्स हैं, इतने हैं, कैसे हो, चलता रहेगा, क्या होगा। भोजन की तो चलो चिंता नहीं है, परंतु जो, तो बाबा ने एक बार ये संदेश में, दादी गुलजार के द्वारा संदेश भेजा था, बाबा ने कहा कि बाबा की सेवा चलती रहेगी, बाबा के यज्ञ चलते रहेंगे, परंतु ये जरूर ध्यान रखना है कि कुछ फालतू खर्च ना हो। ऐसा नहीं बना लेना चाहिए कि यू नो, जैसे समय बदलता है तो सबका ध्यान भी जाता है ना हम लोगों की तरफ, कि देखो बाहर तो लोग इतने हलचल में हैं, उनको तो इतना कमी है। तो इसलिए मुझे याद है एक बार हम मामा थी, उद्घाटन के लिए आई थी दिल्ली में एक सेंटर पर, तो जब आई थी तो बड़ी खुशी थी हमें कि मामा आई है ये वो, तो हमने पिस्ते की बर्फी, ग्रीन पिस्ते की बर्फी बनाई। तभी हम लोग नए नए थे, हमारी सारी फैमिली भी ज्ञान में थी, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो मामा ने रात को मुझे बुलाया, तो बाबा ने, मामा ने कहा कि किसकी, किससे राय ली थी तुमने? मैंने कहा हाँ मैंने राय ली थी, मैंने तो बड़ी दीदी से पूछा था, दीदी ने कहा मामा आ रही है, तो दादी ने ऐसे ही, मामा ने कहा कि देखो राय किसी की भी हो, जिम्मेवारी आपकी है क्योंकि आपने कर्म किया। तो मामा ने ऐसे ही कहा कि देखो ये चीज को ऐसा माना जाएगा ना, भाई बहुत रिच टोली है, बहुत महंगा होता है, तो कहेंगे कि देखो ऐसे ही मशहूर है उमंडली में पिस्ता बादाम, यू नो यही चलता था, तो कहेंगे कि देखो। और तब से मैं हमेशा ये ख्याल आता है कि हम लोगों का जो रहन सहन का स्टैंडर्ड है ना, वो कभी भी जो नॉर्मल जनता है उससे ऊंचा नहीं होना चाहिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि देखो ये लोग तो कैसे खर्च करते हैं। तो बाबा ने ये इशारा जरूर दिया कि सभी सेवा केंद्रों पर जितना जरूरी है जितना वो सब करो, तो कमी नहीं पड़ेगी, बाबा देखभाल करेगा। तो अगर हम तीनों बातों को कनेक्ट करें कि पालना, अगर मुझे निश्चय है पालना के ऊपर जिसकी बाबा जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो फिक्र नहीं होगी। और अगर फिक्र नहीं होगी तो कौन सी दो बातें बाबा ने कहा होंगी, खुशनमा, खुश नसीब होंगे। मैं जब आई न्यूयॉर्क से तो मैं यही तीन शब्द सबको कहती थी कि खुश मिजाज रहो, खुश नमा रहो और खुश नसीब। मिजाज भी ऐसा होना चाहिए प्लेजेंट, लेकिन इसका गहरा कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि चलो हम हंस लिए, खुश हो लिए, अपने को बहला लिया, लेकिन एक अंदर से एक ऐसी निश्चय हो, पूरा निश्चय हो, और उस निश्चय में ये कि बाबा की पालना मिल रही है, बाबा ने जिम्मेवारी ली है, और तीसरा फिर कैसी स्थिति हो, बेफिकर, और जब बेफिकर स्थिति होगी तो कैसा चेहरा होगा। समझते हैं, ये चारों बातों को अगर हम ध्यान में रखें, एक पूरा सब्जेक्ट हो जाता है अगर पालना का, अगर हम देखें तो। और उसमें भी इतना अटेंशन रहता है, जैसे कई हमको कहते हैं नहीं आप लोग तो यज्ञ में करते हैं फिर ये ले जाओ ये करो, मैं कहती हूँ नहीं, कईयों को उसमें हो जाता है कि हम करते हैं तो उतना ही हमें रिटर्न मिलना चाहिए। हम कहते हैं रिटर्न यहाँ थोड़ी लेना है, यहाँ तो जमा करना है ना। मैं आती थी पहले, मुझे सब कहते थे ये ले जाओ ये टोली, मैंने कहा नहीं उतना ही ले जाएंगे जो सबको मिले और जितना जरूरी है, क्योंकि यज्ञ से भी तो हम क्यों एक्स्ट्रा लेना, कोई भी तरह की चाहे वस्तु है चाहे भोजन की बात है, जितना शरीर को आवश्यक है उतना हम ले, तो जमा होता रहेगा ना। तो इसलिए जैसे कि ये जो बाबा ने खास कहा कि हमेशा खुश रहो, चेहरा भी खुश हो, और देखा गया है कि ये जो ज्ञान है, इस बात की समझ है, उससे हमारी वृत्ति बनती है, और वृत्ति जो है उसमें बहुत पावर है। सिर्फ वृत्ति से वाइब्रेशंस नहीं होती है, लेकिन वृत्ति भी आपकी जीवन की एनर्जी है। कभी भी किसी भी वस्तु में अगर वृत्ति चली जाती है, पहले अभी भी आजकल तो नहीं है ना, अंगूर की बेल है वहां पर झोपड़ी के पास, किस सीजन में होता है हम लोग हम नहीं देखते हैं, जून जुलाई में अभी भी है सब अंगूर। तो अंगूर को नीचे से बांधते हैं ना, जैसे जब राइप होने वाला होता है, तो बाबा तो पर्सनली केयर करते थे माली के साथ जाके, तो हम लोग कभी कभी गुजरते थे तो दीदी हमारी जो थी वो बहुत ओपन थी, तो कहती थी देखो अभी तो इसका भोग नहीं लगा, ऐसे मत देखो कि आपकी वृद्धि चली जाए। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमको याद है, अभी भी दादी कहती थी कुछ भी देखो ना वृत्ति नहीं जाए, ये बहुत अच्छा है, शायद ये मुझे मिल जाए, वृत्ति जाती है ना। तो उसमें क्या होता है, कोई भी चीज में अगर वृत्ति चली जाए तो ये बड़ी सूक्ष्म बात है। तो किस तरह से बाबा की पालना मिल रही है, मिलती ही रहेगी, अपने नसीब पर हमको कि कितने खुश नसीब है। तो किसी भी बात में एक तो कहते हैं बुद्धि न जाए, पर दूसरा वृत्ति न जाए। जैसे कई बार हम कहते हैं भाई अनासक्त वृत्ति हो, तो वृत्ति जो है वो बड़ा सूक्ष्म है देखें, और वृत्ति का अफेक्ट भी बहुत है, बहुत पावरफुल होती है। तो वृत्ति जाएगी तो अपनी स्थिति पर भी असर आएगा, और वृत्ति जाने से कोई भी बात में इसको एक ऑब्स्टिकल भी मानते हैं कई बार। तो तब से हमको हमेशा ध्यान रहता है कि कहीं भी के भी वृत्ति नहीं जानी चाहिए, ईश्वरी पालना हमको मिल रही है ना। और दूसरा जो बाबा प्राप्ति के लिए कहते हैं, तो वो एक संपन्न जीवन दिखाई दे। आज सारे वर्ल्ड में ये इंप्रेशन है, लोगों का ओपिनियन है, बाबा कहते भी हैं कि ब्रह्मा कुमारी इज है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, नहीं ऐसा, क्योंकि हम लोगों का रहन सहन सिंपल होते हुए भी कितनी सफाई है, कितना रिस्पेक्टफुली रहते हैं, तो लोगों के मन में ऐसा होता है। परंतु जैसे एक प्राप्ति स्वरूप, जैसे हम आज देखते हैं विदेशों के अंदर, यहाँ भी है लेकिन अमेरिका जैसे देश में इतनी हलचल है, जिसके पास बहुत है वो रखेगा, बैंक्स फेल होती है, जिसके पास नहीं है वो सोचता है हमको आएगा कहां से, दोनों चिंता में है, पैसे वाले भी चिंता में है और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी चिंता में है। तो वो आते हैं हम लोगों को देखने, हम लोगों के चेहरे देखते हैं, कहते हैं आप लोगों को कोई फिक्र नहीं है। तो उसमें एक मीटिंग हुई पीस विलेज वाले, कहने लगे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लोगों के पास इनसिक्योर हो जाएंगे कि हम कितना दें नहीं दें, तो ये कैसा हमारे खर्चे कैसे चलेंगे। मैंने कहा अब ये आप लोगों को अफेक्ट आ गया बाहर का, हम लोग कभी नहीं सोच सकते, मैं तो कभी भी ऐसा संकल्प मन में नहीं लाऊं, लाना नहीं चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा ये तो नहीं होगा, नहीं प्राप्ति स्वरूप। और रियली इतने अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं प्राप्ति स्वरूप में रहने से, याद रहने से। मैंने तो ये देखा है कि संकल्प आता है, शुद्ध संकल्प होता है सेवा का, और वो शुद्ध संकल्प हमारा या जरूरत अनुसार किसी न किसी को उसी समय पहुंच जाता है। मैं तो कई बार संकल्प आता है उसके 10 मिनट के बाद जो फोन आता है ना, वो ये कहते हैं वहीनी बहन हम ये सेवा करना चाहते हैं, वहीनी बहन हमको ये मन में आज विचार आया, एकदम रेस्पॉन्ड आ जाता है, क्योंकि अपनी कोई अटैचमेंट तो नहीं है ना हम लोगों को, तो सेवा अर्थ है, और वो भी एकदम से पवित्र संकल्प होता है। इतना विश्वास अपने अंदर कि बाबा के हम बच्चे हैं, तो कभी भी हम मांगने का तो संस्कार है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्यों मांगे हम किसी से किसी भी प्रकार का। तो मैं इस पर आपको बताती हूँ, हम लोग एक टाइम था ब्रह्मा बाबा ने, साकर बाबा ने एक चैलेंज किया कि जो सबसे बड़ा सेंटर मेन रोड पर दिल्ली में खोलेगा ऐसे ऐसे, तो हम लोगों ने कहा ठीक है चैलेंज स्वीकार किया हमने। तो फिर दिल्ली में ये जो पहले साउथ एक्सटेंशन का म्यूजियम था, तो किराया तो 2200 था, आजकल 2200 रुपए क्या है, पर उस समय 2200 रुपए बड़ी बात थी। तो बाबा ने कहा था कि बाबा आधा किराया देगा एक साल के लिए, ये वो सब करके, और हमने कहा ठीक है बाबा ने चैलेंज दिया तो हम इसको स्वीकार करते हैं। तो जैसे ये सारा बना, तो ब्रिजवन भाई उन दिनों में अभी समर्पित हो रहे थे या तो ब्रिजवन भाई आए, बोला बाबा ने मुझे बोला है और इस तरह से भाई मुझे आधी हेल्प करनी है। तो मैंने उस समय मुझे हमेशा फिर बाबा ने किस तरह से, तो सबको एक बात तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो, ब्लेसिंग जरूर लो। ठीक है, देन हम क्यों बताएं, क्यों पूछें। मैंने कहा किसी को जरूरत नहीं, आप बताओ नहीं बताओ, पूछो ना पूछो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ब्लेसिंग कहां से आएगी। आज मैं देखती हूँ ये जो बाबा कहते हैं ना प्राप्ति और वरदान, अगर हर कदम पर वरदान प्राप्त है तो उसकी जो सफलता होती है ना जीवन में, तो कोई छिपाने की भी बात नहीं है। कई फिर ये कहते हैं क्या जरूरी है, और मैं हमेशा कहती हूँ अभी भी हम दादी गुलजार के पास गए, कोई भी संकल्प होता है नहीं बाबा अगर कहेंगे, क्योंकि आजकल हम कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं बिना बाबा की ब्लेसिंग के, तो दादियों की ब्लेसिंग के पॉसिबल नहीं होता है ना। मैं सबको यही कहती हूँ आज पीस विलेज की सफलता इसलिए कि बाबा ने, यज्ञ ने, दादियों ने कहा कि नहीं होना चाहिए, तो हम ट्रस्टी हैं, हम ट्रस्टी होके संभाल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे संकल्प से आता है ना कि हमें ये करना है ऐसे करना है, तो बोझ बन जाता है जैसे। तो वरदान जो है जीवन में, चाहे अपनी पर्सनल जीवन में और उसके साथ साथ जो भी हम कार्य करते हैं, नहीं तो आजकल फुर्सत है क्या, दादी गुलजार की जैसी तबीयत है ये अनुसार, तो भी मेरे को 5 मिनट बुलाया, मैंने कहा था पिछली बार की बात करनी है, फिर एक प्रोजेक्ट का संकल्प है ऐसे ऐसे, तो बाबा अगर कहेंगे तो हम करेंगे। तो वरदान जीवन में बहुत जरूरी है, जैसे प्राप्ति इम्पोर्टेंट है वैसे वरदान। तो आज जो इस बार बाबा ने कहा ना कि पालना है प्राप्ति और वरदान, आप सबको ध्यान पर रहता है इस बात का कि वरदान ब्लेसिंग जरूर मिलनी चाहिए, कि आप समझते हैं हम चल सकते हैं चला सकते हैं। इसमें कभी भी मनमत नहीं मिक्स होती है, जो बाबा ने कहा ना कि माया जब आती है, माया किस तरह से आती है कि चलो कोई बात नहीं चल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। अभी ब्राह्मणों को माया इस समय इस स्थिति में समर्पित जीवन में किस तरह की माया आएगी। तो ये जो इस पर फिर बाबा ने जो कनेक्ट किया कि दिल जो है, तो बाबा ने जो इस बार कहा ना कि साफ दिल हो और सच्चे दिल हो और बड़े दिल हो। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि सच्चाई और सफाई में क्या फर्क है, सच्चाई तो समझ में आती है, साफ दिल का मतलब क्या है, क्योंकि सच्चाई तो सभी समझते हैं और सफाई भी हम समझते हैं, मतलब ये ठीक है कि निस्वार्थ हो लेकिन कुछ मिक्स ना हो, जैसे मन मत मिक्स हो जाती है, पर मत मिक्स हो जाती है, या कई बार थोड़ा सा अंदर में इच्छा मिक्स हो जाती है किसी बात का नहीं, जैसे अंदर में कोई और वृत्ति आ जाएगी। और हमेशा कहते हैं कि साफ दिल मुराद हासिल, तो साफ दिल की गहराई में जाना बहुत जरूरी है। कि साफ दिल जो बाबा कहता है वो क्यों कहता है, सच्चा दिल है वो तो ठीक है, भावना बहन क्या कहेंगे साफ दिल को। आज मेरे साथ सब बहने आई हैं, क्योंकि हिंदी में हम कभी क्लास कराते नहीं है, रिवाइज भी नहीं होती मुरली हिंदी में, तो सबने कहा हम लोग भी आएंगे, कहो आप लोग भी शेयर करना कुछ ना कुछ। तो वो तो आगे की बात ना, अभी तो साफ दिल क्या कहेंगे, कुछ मिक्स ना हो, 100% प्योरिटी हो, और हाँ फीलिंग्स भी मिक्स ना हो, वृत्ति में ना हो, फीलिंग्स में ना हो, वो चेक बहुत करना पड़ता है। जैसे आप देखेंगे ना कि सफाई है, कई बार ऐसा लगता है सब साफ है, फिर आप हाथ रखो तो डस्ट लगती है। तो रोज आप देखेंगे हमारे पास डस्ट तो आती है, उसने ये कहा ये सुना ये देखा ये डस्ट है, सफाई तो रोज करनी पड़ती है, अगर दो बार भी करो देखने लगे बिल्कुल साफ है, पर सफाई और सूक्ष्म है, सच्चाई को फिर भी हम एकदम समझ जाते हैं परंतु सफाई उसमें फिर रोज हमको एफर्ट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो गया कि कुछ मिक्स हो गया, किसी का इन्फ्लुएंस आ गया, किसी की थोड़ी सी बात हमने सुनी उसका, तो एकदम जैसे साफ दिल हो। और बड़ा दिल, बड़ा दिल कहेंगे जिसमें एक तो क्षमा भाव बहुत जरूरी है। कभी भी बड़ा दिल जिसका होता है ना, वो किसी की गलती को, किसी के भाव स्वभाव को, कोई भी बात, कोई कुछ करता भी है, पहले हम फॉरगिव कर देते हैं। और बड़े दिल में दया भाव भी होता है, क्षमा भाव भी होता है, और क्या होता है। कई नहीं तो बड़े दिल को सिर्फ ऐसे ही समझते हैं भाई कुछ भी ना, बड़े दिल का मतलब कि हाँ वो बड़ा दिल मतलब मोस्टली जन हम कहते हैं दिल बड़ा रखो मतलब, परंतु ये भावना कि सब खुश रहे। बड़ा दिल वाला कहेगा सबको मिले, सब खुश रहे, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी। कोई भी वंचित होता है ना किसी भी चीज से, उसका ध्यान जरूर जाता है। तो बड़े दिल का मतलब ये नहीं कि हम लोग लूज हैं किसी भी चीज में, कि चलो बड़ा दिल है सिर्फ बांटने की बात हो जाती है, लेकिन बड़ा दिल का मतलब रहम दिल, क्षमा भाव भी हो। जैसे किसी के प्रति कोई बात हमारे दिल में नहीं रहनी चाहिए, तो बड़े दिल वाला। परंतु उसके साथ साथ भावना, आज एक भाई ने मुझे कहा, मैं जब ज्ञान में आया था तो मुझसे भी पहले मेरे में भावना बहुत थी, अभी मेरी भावना चली गई है। अभी मेरे को लगता है ये क्या, इस ब्राह्मण में ये भी क्या है, परिवार, भावना मेरी इंस्ट्रूमेंट्स में भी नहीं रही है। तो मैंने कहा बहुत सारी कमियां देख ली ना, उसकी लिस्ट बन गई होगी अंदर, तो कहा वो तो मैं अभी चेंज कर रहा हूं, मुझे ये बताओ मेरी भावना मुझे वापस कैसे आए। तो बड़ा दिल का मतलब ये भी है ना कि अगर हमने कोई बात देख ली, फिर अंदर रख ली, फिर लगता है ये भी तो इसमें है, ये कमी इसमें है, फिर इसी की, तो कहा नहीं मैं तो फ्रैंक हूं, मैं तो स्ट्रेट बोलने वाला हूं। मैंने कहा स्ट्रेट और फ्रैंक क्या होता है, युक्ति युक्त तो होना होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे दुनिया में होता है सच बोलते रहो लोगों को चोट पहुंचाते रहो, ऐसी भी सच्चाई क्या जो लोगों को दुखी करते रहो। कहो नहीं मैं तो सच्ची बात कहना चाहता, मैं तो दीदी हमको करेक्शन देती थी, एक बार किसी ने कहा दीदी मैं तो सच बोल रही हूं, तो कहा ये बार बार कह के दूसरे को कहती रहती हो जैसे तुम वो झूठ बोल रहे हैं, तुम बार बार ये क्यों कहते हो, एकदम करेक्शन देती थी ना दीदी। तो हम लोग एक एक वर्ड बोलते थे, तो किसी बहन, कोई बहन हमेशा कहती थी मुझे तो सच्ची पसंद है, तो उसने कहा किसको सच पसंद नहीं है, क्या तुमको ही सच पसंद है। तो एक जैसे एक जो बड़ा दिल होता है ना वो फराग दिल होता है, इसमें भी एक बड़ा मैं देखती हूं कि बरकत वाली बात आती है। जिसका दिल बड़ा होता है ना उसमें स्वभाव तो अच्छा चाहिए ही, नम्रता भी चाहिए बड़े दिल में, परंतु उसके साथ साथ एक भावना जो होती है गीता मैंने कहा बेहद की होती है, सबके प्रति होती है। कभी भी ये संकल्प नहीं आता है कि कमी हो जाएगी, सब खुश रहे, सब खुश रहे। क्योंकि लोग जब छोटे होते थे, अभी भी बाद में भी देखते हैं कि हम लोग बैठे हैं खाना खा रहे हैं, किसी का ध्यान जाता है और आप ऑफर नहीं करो, तो नेचुरली पता लगता है कि इस समय हम खा भी रहे हैं पर किसी की वृत्ति जाती है, तो इसलिए आजकल हो जाता है भाई ऑफर करो, हाँ आपको, आप भी खाओ। तो दिल बड़े में बरकत है, बरकत शब्द समझते हैं ना। और भावना भी बड़े दिल में, बड़ा दिल रखते हैं ना तो भावना भी बहुत होती है। नहीं तो क्या हो जाता है कि बुद्धि और फिर माया से संघर्ष चलते 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 कई बार जो अपने गुणों के अस्त्र शस्त्र है ना वो चले जाते हैं। जो हमें गंभीरता हो, नम्रता हो, मधुरता हो, वो माया से युद्ध करते करते कभी कभी वो परिस्थितियों का असर आ जाता है, तो हमारा उस तरह का स्वभाव नहीं होता। कोई कहते हैं मैं पहले कभी नहीं गुस्सा किया था, आजकल बहुत आता है, क्यों आना चाहिए आजकल, मैं पहले कभी ये नहीं करता था, अब मुझे पता नहीं क्या हो गया। कई आके हमसे पूछते हैं, खुद हैरान मतलब परेशान होके पूछते हैं हम क्या करें, अब पहले ये संस्कार नहीं था अब ये संस्कार, क्योंकि माया से युद्ध है, संस्कार मिटाने हैं, तो कभी कभी कोई ना कोई संस्कार ऐसे स्ट्रांग हो जाता है। परंतु उस समय पर उसमें क्या होता है कि नहीं अपना गुण याद रखो, अपनी विशेषता याद रखो, कि नहीं मेरा, मेरे को तो मधुर ही रहना है, मेरे को तो रहम दिल रहना ही है, तो वो चला नहीं जाए। नहीं तो जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे अपनी पूंजी है, अपने अस्त्र शस्त्र है, वो कई बार हम मतलब लॉस्ट हो जाते हैं, वो नहीं होने देना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए, अपनी वैल्यू जो है, अपना प्रिंसिपल जो है कि मुझे तो इस प्रिंसिपल पे रहना ही है, तो उसमें जैसे कि एक जैसे बड़ा दिल सुने तो बहुत सिंपल बात है, परंतु जिसका दिल बड़ा है और फिर उसमें भी सच्चाई और सफाई है, उसके अंदर में कुछ भी किसी के प्रति कोई बात होगी ही नहीं कभी भी। बहुत जल्दी वो हाँ दारी जान की कहती, मैं सबको कहती हूँ लंदन में गुस्सा करना हो एक दूसरे पर मत करो, मेरे पर आके करो। कहती मन को कहती आओ मेरे पास, बेशक गुस्से से बोलो, एक दूसरे से मत बोलो। ये भी तो बड़ा दिल है ना, जिसमें सहन शक्ति है कि चलो वो दुखी है, कोई कारण से स्ट्रेस है, कोई बात मन में भरी हुई है, तभी ऐसे परेशान है ना, परेशान है, सुना दो अपनी बात। अब वो दादी पर तो गुस्सा नहीं करेंगे, दादी को तो सुनाएंगे, दूसरे पर तो नहीं। कई बार आप देखते हैं कि इसका चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, कोई छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता है, जवाब दे देते हैं, तो उससे संबंध जो है वो अच्छे नहीं रहते हैं। लेकिन बड़ा दिल रखने से फिर क्या हो जाता है, चलो उसने बात की भी भूल जाओ, हो गई बात, पास्ट हो गया, चलो आगे चलो, तो उससे दिल बड़ा रहता है। इसका मतलब सबके प्रति बहुत प्यार रहता है, सबके प्रति एक नेचुरल स्नेह रहता है, हाँ वो भी जैसे बहुत जरूरी है। 90% हम कहाँ पहुंचे हैं, कितनी परसेंट तक एवरेज पहुंचे अशोक भाई? 80। अच्छा क्या समझते हैं भाई, कितनी परसेंटेज? पचास। बाबा ने 50 कहा है ना, तो 50 से ऊपर है। इसमें भी क्या होता है, परसेंटेज भी कोई निकालने का तरीका निकालना पड़ता है। कभी कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल अभी तो कर्मातीत अवस्था के पास पहुंच रहे हैं, फिर कोई स्ट्रांग बात आती है, परिस्थिति आती है, थोड़ी हलचल होती है या कुछ ऐसा हो जाता है, उस समय से लगता है अरे अब ये क्या हो गया, ये संस्कार कैसे अभी तक है हमें, इमर्ज हो जाता है ना उस टाइम पर। चलो वो भी करके एवरेज निकालनी पड़ती है। तो आज किसी भाई ने मुझे कहा कि पहले तो बाबा कहता था एक कदम बढ़ाऊ मैं 10 बढ़ाऊंगा, अभी तो कहता है 9 बढ़ाओ मैं 1 बढ़ाऊंगा। कई तो बहुत खुश होके गए, कई तो बहुत खुश होके गए, कहते हैं जाते समय मोहिनी बहन हम तो बस लाइट हो गया कि बाबा 10 करके पूरे कर देगा हमको, 100% 101 बना देगा। आज फिर किसी ने आके कहा कि ये क्या चेंज हो गई भगवान के शब्दों। सोचने का तरीका होता है ना, जो ढीला पुरुषा रहती है वो यही सोचता है कि अभी 90 मुझे करने हैं, 10 बाबा करेगा। जो अच्छा पुरुषा रहती है वो कहेगा हाँ ठीक है ना, ये भी तो 10 मिल रहे हैं ना। तो आप लोग किस तरह से सोच रहे हैं? अच्छा मतलब एक कदम से जब बढ़ाएंगे तो 10 कदम 100 गुना वो तो देगा ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो 90 का कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो तो बहुत परसेंटेज मार्क्स की बात आ जाती है। क्या कहती है बहने? क्योंकि कर्मातीत जब होते हैं या वो जो परसेंटेज संपूर्ण स्थिति की होती है वो आपको यानी अपने संकल्पों की सिद्धि से भी, संकल्पों की पवित्रता से भी, जैसे दिल साफ है, बिल्कुल साफ है, नहीं कोई बात। कई बार मामा कहती थी कि मामा के लिए जैसे समुद्र में नदी में पूरी शिप चला जाए, शिप भी अगर चला जाए तो पीछे मुड़ के देखो तो क्या होता है, वेव्स होती हैं पर बाद में 5 मिनट के बाद देखो तो कुछ नहीं होता। इसको पानी पे लकीर कहते हैं ना, कि पानी पे लकीर नहीं लगती है। तो मामा हमेशा कहती थी कि हमेशा ऐसा होना चाहिए जैसे कोई बात का कोई हमारे ऊपर अंश मात्र भी असर नहीं हुआ, तभी तो साफ दिल रहेगी ना। तो परसेंटेज में हम समझते हैं कि ये तीनों बातें साफ सच्चाई और बड़े दिल को भी बहुत इंपॉर्टेंट देंगे। क्योंकि आज के और भी एक भाई कह रहा था कि पता नहीं बुद्धि 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 का ही सारा खेल हो गया भावना। तो मैंने कहा नहीं, बुद्धि का खेल नहीं होना है, तभी बाबा ने हमको दिल के ऊपर जोर दिया कि नहीं सच्चाई हो। तो कर्मातीत स्थिति में जैसे कोई परिस्थिति आई, बड़ी परिस्थिति आई, आप कितने तक सिर्फ बाबा के आधार से चल रहे हैं और निश्चिंत हैं? एक बाबा का ही सहारा है, बाबा की ही शक्ति, बाबा और फिर निश्चिंत भी है। मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि हर एक अपना देखता ही है, तो किसी दो बहनें थी, मैं और एक और बहन थी, हम दोनों को ही शरीर एक कुछ था, तो मैं तो हमेशा अपना चार्ट ऐसे रखती हूँ, हर तरह से स्थूल सूक्ष्म। सूक्ष्म में यह है कि बुद्धि कहीं नहीं जानी चाहिए, स्थूल में यह है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूं, संभालने वाले संभाल रहे हैं, हमसे पूछते हैं, हम ऊपर से अनुभवी हैं इसलिए हम उनको बता देते। तो वो बहन कहने लगी कि मैंने आज सारा दिन बस सॉर्ट आउट ही किया कि भाई कौन सा मेरा है, कौन सा यज्ञ का है, ये किया कि मैं अगर वापस नहीं आई तो कम से कम। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, मैं तो हमेशा रखती ही ऐसे हूं कि जो मुझे यूज भी करना है वो किसी और को पता, और जो स्टॉक है तो स्टॉक वाले संभालते हैं, उनकी जिम्मेवारी है, हमको तो। और बुद्धि जो है कहां गई, कहीं गई। तो समय सब कहने लगे नहीं आप किसी को आना चाहिए फैमिली में, किसको आना। मैंने कहा क्यों, किसी कोई ऐसी आत्मा नहीं होनी चाहिए जिसकी किसी भी कारण से हम लोगों से अटैचमेंट हो, होना नहीं चाहिए, उसकी उपस्थिति ही नहीं होनी चाहिए उस समय। एकदम बाबा का सहारा, एक बाबा है तो दोनों तरह से बुद्धि, एक बाबा के साथ बुद्धि अपनी स्थिति के सहारे के आधार से। और मैंने देखा कि इतना इजी। तो फिर उन दिनों में दादी गुलजार बहुत फोन करती थी, तो दादी मुझे यही कहती इतने ही बाबा ने तुमको बेफिक्र वरदान दिया है, बाबा ने ये, तो वो दादी जान की अपने वरदान, सब वरदान याद दिलाते थे ऐसे टाइम पर। और मैं अपनी अंदर में रियली जिगरी देखा, मैंने कहा ठीक है। दो तीन दिन पहले दादी जान की बता रही थी, जिस दिन शांति वन में फ्लैग होस्टिंग थी, तो कहा मैं 7 बजे उठी, फिर 9 बजे उठी, फिर 10 बजे उठ के बैठू, कुछ जैसे है ही नहीं, लाइफ नहीं है बिल्कुल, जैसे ऐसा लगे अभी। फिर आखिर जन्ने का टाइम आया तो 11:10 हो गए, कहा मैं आके लिविंग रूम में, उन्होंने बाबा का चित्र लगाया, अभी उन्होंने क्या किया, सब दादियों के चित्र लगा दिए, कहती है वो मेरे रक्षक हैं। तो चंद्रमणि दादी का चित्र अपने लिविंग रूम में, दादी ने सब दादियों के चित्र लगा दिए क्योंकि दादी को उनका बहुत होता है। तो कहा मैं आके 11:10 पर बैठी और बाबा को मैंने कहा मैं दोनों तरह से मुझे रेडी होना है, आप बुलाओ तो भी रेडी हूं, झंडे पर जाना है तो भी रेडी हूं। ऐसे कहती है मैं बाबा से बात करती रही कि मैं दोनों तरह से अवर रेडी हूं, झंडे पे भी अभी शरीर आत्मा शरीर में तो पहुंचना चाहिए, आप बुलाते हो तो बुला लो तो भी ठीक है। कहा बस ऐसे मैं बात कर रही हूं और हिम्मत आ गई, नहाया 11:30 11:35 तो दादी वहां पहुंच गई, पर अपना अनुभव सुना रही थी कि ये जो एवर रेडी की स्थिति है ना, जिसमें अपना सब कुछ समेटा हुआ हो, हर चीज। जगदीश भाई भी अपना उदाहरण देते थे कि उन्होंने हर चीज, कोई भी चीज में इतना भी अगर, थोड़ा भी अगर अटैचमेंट है ना, थोड़ा भी, चाहे शरीर में, चाहे वस्तु में, चाहे संबंध में, वो जब एक्सट्रीम सिचुएशन आती है ना, उस समय देखना होता है कि मैं एवर रेडी हूं। और एवर रेडी, और सबसे बड़ी बात, उस समय कहीं भी अगर थोड़ा भी ध्यान गया तो वहां मार्क्स कम हो जाते हैं। तो कर्मातीत स्थिति का मतलब ये है, क्योंकि जब तक कर्मों का हिसाब है तो बुद्धि पुल होती रहेगी, जब कोई हिसाब किताब ही नहीं रहेगा तो चुक तो करना है, परंतु एकदम ऐसे लगेगा जैसे बाबा के साथ है बाबा, पर इतनी फिर उस समय पर शक्ति आ जाती है, मदद मिलती है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे हम अपनी परसेंटेज, कोई भी हलचल होती है किसी बात से, हम लोग ब्रह्मा बाबा के समय से कई अनुभव हैं, तो वो एकदम हमको ख्याल में आ जाता है। जैसे अभी भी ऑपोजिशन होती है, नहीं बाबा ने एक मुरली में अभी एक दो बार काफी ऑपोजिशन होती है, या क्रिटिसिज्म होता है, या कोई लोग इस तरह की बातें कहती हैं, हमको हमेशा बाबा सामने आ जाते हैं कि बाबा के लिए क्या नहीं, कितना विरोध यज्ञ में हुआ, कितना बाबा उस समय अकेले थे, पर बाबा सदा हर्षित रहते थे, बेफिक्र रहते थे, क्योंकि उनको पता था ये सच है, विजय तो होनी है। हमने खुद देखा कितनी परिस्थितियां थी, इतनी परिस्थितियां थी, पर बाबा ने कभी भी किसी परिस्थिति में, इतना निश्चय बाबा का था। तो इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए तो, और फिर ये जरूर है कि जो बात अभी आई है वो फिर रिपीट नहीं होगी, नई बात आएगी और ऐसी आएगी जो एकदम सिंहासन हिला देगी। ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे देखो बाबा के कई अनन्य बच्चे थे, अभी कोई अनन्य स्टूडेंट होता है, अचानक उसको माया आ जाती है, किसी कारण से दूर हो जाता है, तो कितने संकल्प चलते हैं, कुछ नहीं, उसका पार्ट था, हमको क्या करना है, गुड विशेष देनी है, शुभ भावना शुभकामना रखनी, तो चलने नहीं देते हैं बुद्धि को, क्योंकि बाबा को हमने देखा ना, घर के कितने बच्चे बाबा से गुड बाय कहने के लिए आए, बाबा ने कहा बच्चे अच्छा जाना चाहते हो बच्चे ये, तो ये भी जरूर दो बातें, एक तो शुभ चिंतक भी रहो पर कितना किसी बात का संकल्प चले, समझते, एक संकल्प चलता है ऐसा नहीं हो, दूसरा भी चेंज कर देते एकदम कि क्यों संकल्प चल रहा है, शुभ चिंतक रहो नहीं, ये एक बाबा ने जैसे एक साधन दे दिया है कि किसी भी बात में अचानक कुछ हो तो क्या करो, सडनली कुछ हो तो करना क्या है, गुड विशेस देंगे ना, तो ये जो गुड विशेस का बाबा ने हमको मेथड दिया है उससे भी मैंने देखा है एकदम बात आती है, कुछ होता है एकदम से चेंज हो जाता है। तो इसलिए जैसे बाबा ने जो हम लोगों को लेटेस्ट प्रैक्टिसेस दिए ना, उसमें भी जितना ज्यादा हम करते हैं वो प्रैक्टिसेस, तो हमको खुद ही अनुभव होगा कि अब हमारी स्थिति जो है, यानी चेंज, बहुत चेंज महसूस होगी, पहले वो बात पे ध्यान जाता था अब तो जाता ही नहीं, पहले उस बात का ख्याल अभी तो होता ही नहीं, से खुद महसूस होगा कि हाँ जैसे पानी पर लकीर है, बात आती है थोड़ी देर के बाद याद ही नहीं रहती है, अगर वो बात चलती रहे संकल्प आता रहता है इसका मतलब अंदर चली गई है ना वो बात, तो हम जाने ही नहीं देना क्योंकि जाएगी फिर निकालना पड़ता है ना, तो उसको थोड़ा ऊपर के लेवल से जो बात आती है चलाओ, फिर होमवर्क बाबा ने दे दिया गुड विशेस, गुड विशेस, ये भी एक जैसे जिन को कहा ना कि काम करते रहो करते रहो, तो बाबा पक्का कराता रहे हैं बच्चे की शुभ भावना शुभ, तो मैंने देखा इतना अच्छा मेथड है, जैसे मैंने शुरू में कहा ना ज्ञान का दिन रात, ज्ञान से ही हमारा जवाब हो, नॉलेजफुल रहे हम, और नॉलेजफुल के साथ साथ फिर शुभ भावना और शुभकामना इन दोनों कंबाइन करें, तो मैं समझती हूँ कि स्थिति जो है वो न केवल संपन्न रहेगी लेकिन खुद भी महसूस होगा, क्योंकि ध्यान जाता है, करते भी है ना, सेवा भी करते हैं, फिर यही रहता है, सेवा तो बाबा की है वो तो करा लेगा, आप किसी से भी करा लेगा, पर मेरी स्थिति तो बाबा नहीं बनाएगा ना, कई अपनी स्थिति खो देते हैं, सेवा में खो देते हैं, किसी मैं कहती हूँ काम तो बाबा का हो जाता है पर हम तो रह जाएंगे तो कौन पूछेगा ना, बाबा भी उस समय क्या कहेगा, लेकिन मुझे ये ध्यान हो कि ईश्वरीय कार्य तो होता ही है, होता रहेगा, कभी भी सर्विस में किसी भी कारण से मैं अपनी ऑर्डिनरी स्टेज नहीं लाऊं। आजकल बाबा बहुत ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे अलौकिक ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए कुछ भी, क्योंकि ऑर्डिनरी भी शोभा नहीं देता है, चाहे शब्द है चाहे व्यवहार है, कोई बात करने का तरीका है, कोई बिल्कुल साधारण शब्द यूज करते हैं वो नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ कहना भी है तो उसमें वो रॉयलिटी हो, वो सम्मान से अगर कोई भी बात किसी को दी जाती है तो बात उसके पास रहती है, सम्मान से नहीं दी जाती है तो उसके पास वो बात रखेगा ही नहीं, क्योंकि अच्छे ढंग से नहीं आई ना, अच्छी बात अच्छी थी कि कहते हम तो सच्चे बोला ना उसको, ठीक बात दी, कि ठीक तरीके से नहीं दी, ठीक टाइम पर नहीं दी तो भी नहीं लगती है, कई पूछते हम करेक्शन दें कि नहीं, करेक्शन तो हमें देने का कोई राइट नहीं, हम सजेशन दे सकते हैं वो भी राइट टाइम पर दो ना, कोई चलते फिरते सजेशन देते हैं तो भी गिर जाता है नीचे, किसी के पल्ले नहीं लगता है, फिर खुद ना किसी ने कहा मेरी तो कोई मानता ही नहीं है, मैंने कहा क्यों नहीं मानता, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, मैंने कहा ये कोई अच्छा शब्द है क्या, तो इसमें उनकी गलती नहीं है कि आपका कोई नहीं सुनता है, उसमें आपकी गलती है, क्या मेरी क्या गलती है, फिर मैंने एक बात हुई, मैंने कहा अच्छा मैं आपको बताऊंगी जब आपने कहा तो जिस तरह से कहा, जो सुनने वाला है वो भी कान बंद कर लेगा, तो सब सुनेंगे, लेकिन उसको राइट तरीके से, राइट बात। तो बल्कि नहीं कहेंगे ना तो भी लोग पूछेंगे, बताओ हमको, आप कोई बताओ, कोई बात हम ठीक कर सकते हैं बताओ। लेकिन जो सारा दिन ही ठीक कराता ही रहेगा तो दूसरा भी जैसे इम्यून हो जाता है, भाई इसको तो कहना ही है, कहने दो, लेने वाला लेता नहीं है। तो अभी संबंध और व्यवहार में भी हमारे इस तरह से अगर रॉयल तरीका आता जाता है तो फिर साधारण होने की कोई जरूरत ही नहीं, बहुत अलौकिक तरीके से सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो बाबा ने फिर से पक्का कराया ना इस बार, तीन बातें बाबा ने कही, एक व्रत, दूसरा खान पान, तीसरा जागरण। तो मैं उस पर भी सोच रही थी कि तीनों बातों पर ध्यान देना है, कि अपना पवित्रता का व्रत को बाबा गहराई में ले जाते हैं, कि सिर्फ ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, लेकिन इतनी भी। और फिर देखो, ब्रह्मचर्य करने के बाद अगर कोई सूक्ष्म में अशुद्धि रह गई, इतनी सेक्रीफाइस के बाद भी फिर 100% नहीं हुई, तो उसका फायदा क्या ना। तो उस व्रत में कहीं भी वृत्ति ना जाए। बाबा ने कहा एक बार, पिछली बार था या मुरली पड़ी थी लास्ट संडे, कि वृत्ति नहीं जानी चाहिए, वो फिर व्रत जैसे भंग हो जाता है। और इसलिए लोग व्रत रखते हैं, आज खाना नहीं बनना है, पर सारा दिन यही प्लान चलता रहे शाम को क्या बनाना है, व्रत है शाम को क्या बनाना है, चलो आज शाम को ये बनाएंगे, तो वृत्ति तो खाने में गई ना, तो व्रत का क्या फायदा हुआ। या कई बार हम लोग दिल्ली में होते थे, लोग माताएं व्रत करती थी, फिर फिल्म देखने चली जाती थी टाइम पास करने, तो हम कहते थे भाई वो तो कुछ भजन कीर्तन करो, सत्संग करो, तीन शो में चली जाती थी बड़े बड़े की माताएं, कि क्या करें भूख लगती है तो हमने फिल्म देखना शुरू कर दिया। तो व्रत जो है बाबा ने का नहीं, पवित्रता का। और खान पान में भी आजकल बहुत अटेंशन चाहिए, थोड़ा खाओ कुछ भी, लेकिन एकदम शुद्ध हो, क्योंकि उसका भी बहुत सूक्ष्म है, वो तो हम सबकी परहेज है। और हमेशा अपना अटेंशन रहना ही तो हमारा जागरण है ना। आप लोग सुनाएंगे कुछ बहने, किसको कोई है संकल्प, भावना बहन सुनो, गीता बहन, आप वो गीता बहन, दूसरी गीता बहन भी है कोई और विचार, क्योंकि आज दोपहर को बैठे थे तो सबसे इंटरप्रिटेशन हर एक का जो होता है ना, अपना सोचना क्या विचार सागर मंथन चला। सभी जानते हैं भावना बहन को, हमने ये देखा कि ज्ञान सरोवर निवासी, पांडव भवन निवासी सबको अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह से चाहे ना भी मिलते हो। भावना बहन न्यूजीलैंड में रहती हैं, कितने साल से ज्ञान में है?
ज्ञान में 38 years।
अच्छा, और विदेश में?
विदेश में 28 years।
ये जो अपनी नेहा बहन है ना, अब आपकी बहन है ना लौके, मालूम है नेहा बहन जो अहमदाबाद में है, जो सारी खरीदारी भी करती है।
ओ शांति, जस्ट एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगी। जैसे मोहिनी दीदी ने तो बहुत सारी बातें हमें बता दी, लेकिन बाबा की वो जो लेटेस्ट मुरली में बाबा ने एक बात बताई कि खुशी जैसा कोई खुराक नहीं, तो मैं आज सारा दिन सोच रही थी कि खुराक का कितना महत्व होता है तन और मन के ऊपर। और बाबा ने कहा कि खुशी वो सबसे अच्छी नरिशमेंट है, सबसे अच्छी खुराक है, तो क्यों बाबा ने ऐसे कहा। तो फिर संकल्प आया कि जैसे कि कहा भी गया है कि वो जो खुराक है वो शरीर के लिए जरूरी है, और वो खुराक चाहे कितनी भी हम खाए फिर भी जो अंदर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए वो कभी कभी नहीं होती है। ट्रैफिक
यहाँ तो फोन में भी ट्रैफिक कंट्रोल होता रहता है
और वो खुराक खाने से कभी कभी हम थोड़ा ग्रीडी भी बन जाएंगे, थोड़ा खाने के बाद फिर नींद का भी वो नशा चढ़ता है, तो वो खुराक आलसी भी बना देता है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये खुशी की खुराक ऐसी खुराक है, जितना जास्ती उस खुराक को हम खाते जाएंगे उतना ही हम अलर्ट और एक्टिव बनते जाएंगे और अंदर में वो आंतरिक संतुष्टि का आत्मा अनुभव करती है। बाबा ने एक बार ये भी बताया था कि ये खुशी की जो खुराक है वो हमारी आत्मा के लिए एक विटामिन का काम करती है, जैसे शरीर को भी हेल्थी रखने के लिए कहते हैं सर्टेन टाइप्स के विटामिन बहुत जरूरी है, और शरीर के लिए भी कहते हैं कि चार मुख्य विटामिन है A, B, C और D। तो यही चार विटामिन हमारी आत्मा को भी चाहिए, और वो विटामिन की गोलियां भी तो देखो सवेरे सवेरे खाते हैं ना, ताकि सारा दिन उसका असर रहता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि ये जो खुशी की खुराक वो भी एक विटामिन का काम करता है, तो ये विटामिन भी हमें लेनी है सवेरे सवेरे अमृत वेले। विटामिन ए माना आत्मा कॉन्शियस बनने का अभ्यास करना है। विटामिन बी, बी भी बहुत इम्पोर्टेंट ग्रुप माना जाता है, अगर उसकी शरीर में कमी हो तो शरीर ठीक नहीं चलेगा। तो विटामिन बी माना बाबा कॉन्शियस, विटामिन सी माना साइकिल कॉन्शियस, साइकिल को घुमाते रहना है, और विटामिन डी माना ड्रामा फुल स्टॉप। तो ये चारों ही प्रकार के विटामिन आत्मा और शरीर दोनों के लिए जरूरी है। फिर कहते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए उसमें स्टार्च भी होना चाहिए, अगर स्टार्च नहीं है तो शरीर आपका ठीक से काम नहीं करेगा। तो कहते हैं आत्मा को भी स्टार्च चाहिए, तो आत्मा के लिए स्टार्च कौन सा है? तो आत्मा का स्टार्च वो हो गया सर्विस, सर्विस के बिना आत्मा नहीं रह सकती। फिर शरीर को ठीक रखने के लिए कहते प्रोटीन भी चाहिए, बिना प्रोटीन शरीर कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारी आत्मा को कौन सा प्रोटीन चाहिए? तो वो प्रोटीन है प्यूरिटी, जिसके आधार पर ये ब्राह्मण जीवन हमारा सारा तैयार हुआ है। तो वो प्रोटीन हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। फिर तीसरी बात कहते हैं कि भोजन को जब टेस्टी बनाते हैं तो कहते हैं उसमें मिनरल्स भी होने चाहिए, बिना मिनरल्स भोजन इतना टेस्टी नहीं होता है। तो आत्मा के लिए कौन सा मिनरल्स है? तो वो है दिव्य गुणों का, दिव्य शक्तियों का। वो मिनरल्स अगर हमारी आत्मा में भी है तो उससे भी जीवन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग बनता है। फिर कहते हैं कि ये सब प्रकार के विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, मिनरल्स भी हो, तो ये कंप्लीट फूड वो कौन सा है? हम लोग जा रहे थे ना, तो वहां पर ये हेल्थ भगत जो होते हैं ना बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये सर्टेन टाइप की विटामिन खाओ, ये पाउडर लो, ये लो, ये कंप्लीट फूड है। लेकिन हमारी आत्मा के लिए ये कंप्लीट फूड वो है बाबा की मुरली, उसमें सब प्रकार की चीजें हमें मिल जाती है। तो ये जो कंप्लीट फूड हर रोज हम आत्मा को देते रहेंगे तो हमारी आत्मा खुश रहेगी। तभी बाबा ने यही बात बताई कि खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। ओम शांति।
बहुत सारा फॉर्मूला मिल गया रे। गीता बहन आप भी आओ। इस बार तो बाबा ने खुशी को दो कह दिया, मन के लिए भी और हेल्थ और वेल्थ। वो नई बात सुनाई बाबा ने, हेल्थ और वेल्थ दोनों। गीता बहन अमेरिका में लॉस एंजलिस में रहती है। देखो माता जी की भी डिमांड में है, फोन बज रहे हैं उनका, रोटी के इंतजार कर रहे हैं। रघु माता के पास भी सेल फोन है देखो। हमारा भी इतना फोन नहीं बजता होगा जितना इनका बजता होगा। अच्छा माता जी दो मिनट टोली लेके जाओ, फोन देख लो सुन लो।
ओम शांति। बाबा ने वहां विदेश में रहते एक चीज बहुत अंडरलाइन किया कि एक बल एक भरोसा। वहां लॉस एंजलिस के नजदीक में एक दूसरा स्टेट है, उसको एरिजोना नाम है, वहां एक प्रकार का जैसे जाड़ होता है वो हमेशा जैसे गर्मी के देश में होता है, वो कहां भी दिखाई नहीं देगा। तो उसकी विशेषता को देख के बाबा की याद बहुत आती रहती, क्योंकि विदेश में जैसे यहाँ इतने बड़े परिवार वाले होते हैं तो वहाँ इतना संगठन का अनुभव नहीं रहता, बनाना पड़ता है। तो ये जो जाड़ है, इतनी गर्मी 170 डिग्रीज होती है, तो न उसके मीन्स कोई प्रकार की जैसे न छाया है, वो अपने जैसे एक धूप में रहता है फिर भी एवरग्रीन रहता है, और कहा जाता है कि पानी नहीं मिले पर उसके अंदर इतना ठंस पानी होता है, और उसके बीच में इतना अच्छा खुश मीन्स फ्लावर्स भी होती है। तो बाबा ने कहा कि जहां भी हो, जहां आपके साथ बाबा होता है सदैव एवरग्रीन हो जाती है, और परिवार के साथ रहते हुए भी आप न्यारा और प्यारा का अनुभव करो तो बाबा सदैव साथ रहता है। तो यही हमेशा है कि जहां भी मीन्स हमारी बड़ी बहनें दादियां सेवा के लिए भेजती है, कभी न भाषा के न मीन्स पता चलता है कि कहां जाए, फिर भी बाबा जहां भी साथ है तो परिवार का अनुभव होता है। तो लास्ट 30 ईयर्स से मैं इस ज्ञान में हूँ, और 29 ईयर्स से मैं विदेश में सेवा करती हूँ। ओम शांति।
चारू बहन आओ। चारू बहन बहुत 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 गुण है, इनमें बहुत विशेषताएं हैं, गुप्त हैं, 100% सच्चाई, दारी जानकी का 100% इनमें ट्रस्ट है। यज्ञ का जितना भी लंदन का अंदर का धन का ये सब कारोबार चारों बहन संभालती है, इतना दादी को इनके ऊपर ट्रस्ट है, और इतनी विधि पूर्वक ये करती हैं। तो ईश्वर दादी तो है ही है, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा पार्ट। चारों बहन लंदन में, लंदन की नहीं विश्व का करना पड़ता है ना इनको, लंदन से तो विश्व का कनेक्शन है, लेकिन इतना अच्छा लाइट भी रहती, कभी इनको नहीं आता, नहीं तो कईयों को होता है कि हम ये सेवा करें वो करें, ये तो इस सेवा को लिया हुआ है इन्होंने, उसी से सारे यज्ञ का संचालन बहुत अच्छी तरह करती है। माइक है ना,
ओम शांति। ये भी एक भाग्य कहेंगे कि खुद का परिचय नहीं देना पड़ता, सबने परिचय दे दिया।
दूसरा परिचय दो, कब से ज्ञान में है वो हमको नहीं याद है।
और परिचय वैसे
कितने,
2 दिन पहले मैं दादी गुजर से ऐसे मिल रही थी, तो उन्होंने भी वही बताया कि दादी जानकी का फेथ आप में है। तो हमने उसमें यही बताया कि ये भी एक भाग्य है जो बड़ों की हमारे पर एक नजर रहती है, और वो विश्वास रहता है, और विश्वास ही हमारे अंदर वो विश्वास बढ़ाता है। जैसे बड़ों की जो भावना हमारे में है वो भावना मैं समझती हूँ कि काम कर रही है। वैसे ज्ञान में अभी 26 साल हुए, और 24 साल से वहाँ बाबा के पास से सेंटर के अंदर लंदन में ही ज्ञान मिला। और ये विशेष बात रही कि शुरू से लेकर के दादी जानकी की पालना मिली। हमेशा पहले ये होता था कि किसी से ऐसा संपर्क बने जिसके कारण हमारा जीवन बहुत ऊंचा बने, क्योंकि पढ़ा वो था, पढ़ने का शौक था, बहुत पढ़ते थे, पढ़ते पढ़ते अंदर ही अंदर जैसे नहीं महल बनते जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जब रियलिटी में जब आते हैं, वास्तविकता जब देखते हैं दुनिया की, तो उस समय लगता नहीं है कि जो कुछ हमने संकल्प किए हैं, बहुत बड़े बड़े संकल्प, वो हो सकेगा या नहीं, तो उस बात में जैसे थोड़ा वो हो रहा था। पर जैसे दादी जानकी का जरूर बाबा ने निमित्त बनाया दादी को, जो जिससे हमारी पालना बनती रही, और जो भी कितनी बातें जो हमने सुनी, और ये भी जरूर कि जैसे अभी सुना कि जो आजकल की जो परिस्थितियां जो है विश्व के अंदर फाइनेंशियल संबंध से, तो कईयों के अंदर ये संकल्प चलता है, एक चिंता लगी पड़ी रहती है कि कल उन लोगों का क्या भविष्य है। जैसे जवान भी है, यंग जनरेशन भी है, अच्छी अच्छी पढ़ाई वाले भी है, प्रोफेशन वाले भी है, परंतु उनको अपना कल के लिए कोई निश्चय नहीं है, कोई विश्वास नहीं है कि कल उन लोगों का क्या भविष्य है। और हमारे लिए तो चलो अच्छी बात है कि भाई बाबा के पास बैठे हैं तो बाबा है और हर प्रकार से हमारी परवरिश हो जाती है। जो अपनी रीति से रहते हैं तो उनको तो विचार करना ही पड़ता है कि किस तरह से, परंतु ये भी एक बात है कि जब जितना बाबा के अंदर विश्वास है, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो जरूर बाबा जैसे बताया दाल रोटी जो है मिल जरूर जाएंगे, और जास्ती कुछ न मिले परंतु दाल रोटी तो जरूर मिल सकती है, और जैसे बताया उसमें ही सारे विटामिन सारी सब कुछ मिल जाता है।
या चारू बहन को आजकल मैं ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, इनको बहुत समय, इनकी अभी भी इनकी तबीयत देखने में नहीं आती, लेकिन इनको सारी बॉडी में बहुत आर्थराइटिस, कभी चल भी नहीं पाएंगी, उठ नहीं पाएंगी, तो भी ऐसे चलती रहती है ऐसे जैसे अपना कारोबार बहुत होता है। तो जब मुझे पेन होती है तो मैं इनको याद करती हूँ, मैंने कहा देखो ये कैसे चलती है, इनको तो एक्सट्रीम कभी कभी जो ऐसा समय रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, अपना जो कुछ कभी आपको पता भी नहीं लगेगा कि कुछ है ना, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
वैसे क्या है सिर्फ नाम आ जाता है, बाकी सारी टीम है और ऐसी अच्छी सी सदोरी टीम है जो सभी,
नहीं अभी तो अच्छे अकाउंट इतने बड़े हैं कि टीम तो चाहिए, पर फिर भी कोई इशारा समझ लेते हैं ना, मेन बात तो यही होता है। थैंक यू हेमलता मैन, आप आएंगे, टाइम हो गया है, आ जाओ एक दो मिनट फिर। आज आप इनको वो जो कहते हैं ना फिल्म का प्रीव्यू दिखा दो, फिर आप लोग सब पूरी क्लास कराना। गीता मैंने हिंदी में अनाउंस किया ना कि क्लास होगी, तो सभी बहनें कहने लगी हमारी तो कभी हिंदी की क्लास होती नहीं है।
ओम शांति। जब मैं बाबा की मुरली सुन रही थी और बाबा ने बहुत सारी मुरलियों में भी कहा है और लास्ट मुरली में भी कहा है कि सबको बाबा का परिचय होना चाहिए और सबको अपनापन कि बाबा हमारा है ऐसा महसूस होना चाहिए, तो ये दृढ़ संकल्प चलने लगा कि कैसे इस प्रकार की सेवा की जाए। उसमें दो बातें मुझे याद आई, एक तो हमें किसी को, मतलब हम तो जिस कंट्री में रहते हैं हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, और हम लोगों का उनसे कनेक्शन भी अच्छा है, रिलेशन भी अच्छा है, वो हमारे पास आते हैं, हम उनके पास भी जाते हैं, तो इस बात में और ही अच्छा हो जाएगा। वो भी हम लोग को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और हम भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, तो यही उनको बताएंगे कि आप जिसको भी बिलीव करते हैं, किस जिसमें भी आपका विश्वास है, उसके पिता जो है वो परमात्मा शिव कहे या परमात्मा का कोई भी नाम लेकर के कहे, उसको याद कीजिए, क्योंकि क्राइस्ट भी जब क्रॉस पे थे, जब लास्ट मोमेंट पे थे, तो भी उन्होंने भी बाप को याद किया था, फादर को याद किया था, और जो प्रकार की सरकमस्टेंसेस और सिचुएशन आज चल रही है, तो अगर हम उनको परम धाम का रास्ता दिखा दें जो कि यहां से ऊपर चले जाएं वो, तो वो दुनिया की सिचुएशन से दूर हो जाएंगे। तो एक तो बाप और बाप का घर, ये दो चीजों के ऊपर मैंने सोचा है कि कोई भी प्रकार की बातें हम बोलेंगे, चाहे वो लेक्चर हो, चाहे वो छोटी सी बात सुनाना हो या मिलना हो या फीलिंग जो क्रिएट करना है, ये दो बातों के ऊपर बेस बना करके वो फीलिंग क्रिएट करेंगे, गुड विशेस हम क्रिएट करेंगे सबके लिए। यही शुभकामना और भावना।
लता बहन जो है वो 11 आइलैंड्स या देश, छोटे देश उनका संचालन करती हैं अमेरिका के साइड में, जितने भी करेबियन, और चक्कर एक जगह 2 हफ्ते 3 हफ्ते 5 हफ्ते ऐसे सभी स्थानों पर वो घूमती रहती है। बहुत उनको इजी लगता है, अच्छा भी लगता है, बहुत बहुत प्रेम से करती है। चाहे नहीं सब टोली देखे यहाँ
40 ईयर्स हम ज्ञान में बाबा की अव्यक्त पालना 40 ईयर्स लिए है। बाबा जब साकार में थे तब हम ज्ञान में आए थे, लेकिन उनसे मिलना नहीं हुआ, सिर्फ हमने लेटर उनको भेजा था, उसका जवाब आया था, तो हम उसमें भी खुश है।
हेमलता बहन ऐसे मेडिक डॉक्टर हैं कि इन्होंने पढ़ाई की, फिर इनको जब मिला कि आप जाओ गयाना में, उस समय मैं भी गयाना में थी, हम दोनों वहां थे काफी समय, फिर उसके बाद मैं तो अमेरिका आ गई, तो कैरेबियन का इन्होंने ही सारा संभालना शुरू कर दिया। और उनको ये याद भी नहीं है कि मेडिसिन का कुछ भी नहीं। हेमलता बहन 1 साल